नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग में 3.23 अरब डॉलर से ज्यादा के कारोबार के साथ भारत वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री रैंकिंग में 11वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक खुदरा बिक्री में गिरावट के बीच भारत ने एक पायदान का सुधार दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रैंकिंग में 11वां स्थान हासिल करने के साथ ही भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री बाजार ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 6ठा स्थान बरकरार रखा है। इस रैंकिंग में पहले 5 स्थानों पर कोरिया, चीन, जापान, मलेशिया और ताइवान रहे। भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री बाजार ने गत 3 वर्षों के दौरान 13.3% से अधिक की संचयी वार्षिक वृद्धि दर हासिल की है। दुनिया की शीर्ष 10 प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियों में 3 भारतीय बाजार में हैं। दिल्ली रियल एस्टेट नियामकीय प्राधिकरण यानी दिल्ली रेरा ने राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय रियल एस्टेट डेवलपरों एवं बिल्डरों को हर एक परियोजना के लिए आवंटी शिकायत प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश दिया है। आवंटियों की शिकायतें दूर करने के लिए बनाए जाने वाले इस प्रकोष्ठ का एक निर्दिष्ट टेलीफोन नंबर होना चाहिए। इसके अलावा बिल्डरों एवं डेवलपरों को अपनी परियोजनाओं की रेरा पंजीकरण संख्या, पता एवं नाम और इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी का फोन नंबर के साथ ब्यौरा भी हर एक परियोजना के निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा। दिल्ली रेरा ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी बिल्डरों एवं डेवलपरों को 30 सितंबर तक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। ऐसा करने में नाकामी को रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा, जिस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रियल एस्टेट नियमन एवं विकास अधिनियम 2016 की धारा 61 के तहत अगर किसी रियल एस्टेट फर्म के प्रवर्तक प्रावधानों एवं नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर संबंधित परियोजना की अनुमानित लागत का 5% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली रेरा के चेयरमैन आनंद कुमार ने इस संबंध में पीटीआई भाषा के साथ बातचीत में कहा कि इस प्रकोष्ठ के गठन से निर्माणाधीन परियोजनाओं में घर खरीदने वालों या खरीदने की योजना बना रहे लोगों की परियोजना के बारे में सही सूचना हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आवंटी शिकायत प्रकोष्ठ के गठन और आवंटी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति से बिल्डर के स्तर पर एकल शिकायत निपटान व्यवस्था बनेगी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस साल की पहली छमाही में 41.6 करोड़ यात्रियों को सेवाएं दी गई, एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। ये वैश्विक महामारी के पूर्व 2019 की समान अवधि के आंकड़ों से अधिक है, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण प्रकोप और उसके कारण लगे लॉकडाउन के खत्म होने के बाद अब फिर से लोग निश्चिंत होकर यात्रा कर रहे हैं। दुबई हवाई अड्डे के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पॉल ग्रिफिथ्स ने उक्त घोषणा करते हुए कहा कि धीरे धीरे वैश्विक महामारी के पूर्व के स्तर से आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले हर एक अतिथि का अनुभव सुखमय हो। आंकड़ों के अनुसार 4.16 करोड़ यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष की समान अवधि से करीब 50% अधिक है। तब यात्रियों की संख्या 2.79 करोड़ थी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अभी 104 देशों में 257 गंतव्यों के लिए विमान सेवाएं संचालित की जाती हैं। वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के बीच प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी हुई। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 92.83 अंक चढ़कर 65,308.92 पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी 35.5 अंक बढ़कर 19,429.10 पर रहा। सेंसेक्स के शेयरों में एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील और लार्सन एंड टुब्रो में बढ़त हुई। दूसरी ओर जियो, फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस और टाइटन के शेयर में गिरावट देखी गई। अन्य एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग फायदे में रहे, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट नुकसान में रहा। अमेरिकी बाजार सोमवार को अधिकतर सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.14% गिरावट के साथ 84.34 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि ब्रिक्स वैश्विक विकास की एक अहम ताकत है तथा 5 सदस्यीय इस समूह की अर्थव्यवस्था विनिर्माण प्रक्रिया में अहम बदलाव के साथ G7 देशों के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के करीब पहुँच रही है। वो ब्रिक्स विनिर्माण व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। गोयल ने इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा, हम किन चीज़ों का विनिर्माण करते हैं, हम कैसे विनिर्माण करते हैं, किसके लिए हम विनिर्माण करते हैं, उसमें 21वीं सदी ने बहुत बड़ा बदलाव देखा है। उन्होंने सम्मेलन में कहा, विनिर्माण व्यापार और उद्योग का एक अहम हिस्सा है और वो एक देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। वैसे तो अर्थव्यवस्था में उनका वर्चस्व बना रहता है, लेकिन हम किन चीजों का विनिर्माण करते हैं, कैसे हम विनिर्माण करते हैं, उसमें 21वीं सदी ने बड़ा बदलाव देखा है। ये सम्मेलन 15वें ब्रिक्स सम्मेलन से पहले एक अहम कार्यक्रम है। बुधवार को 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।